ये आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से समाचार सुनिए। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, जिसमें लगभग 60.42% मतदान हुआ। सबसे अधिक 66.25% मतदान उत्तर पूर्वी जिले में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 56.16% मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में दर्ज किया गया। जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई, उनमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी मनीष सिसोदिया और भाजपा के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश भिथोड़ी शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा इस चुनाव में प्रमुख चेहरे थे। विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में थे। इस बीच तमिलनाडु की इरोड ईस्ट और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। इरोड ईस्ट में करीब 67.97% और मिल्कीपुर में करीब 65.35% मतदान हुआ। इन दोनों सीटों और दिल्ली विधानसभा की सभी सीटों के लिए मतगणना शनिवार को होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन के साथ मुलाकात में संपूर्ण एआई स्टैक, जीपीयू मॉडल और ऐप बनाने की कार्यनीति पर चर्चा की। श्री वैष्णव ने बताया कि श्री ऑल्टमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण के दृष्टिकोण की सराहना की है। श्री ऑल्टमैन ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए महत्वपूर्ण बाजार बताया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने बहुपक्षीय सुधारों की आवश्यकता सहित संयुक्त राष्ट्र के एजेंडों के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा क्षेत्रीय, वैश्विक और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। श्री मोदी ने कहा कि संगम पर स्नान करना दिव्य जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मां गंगा देशवासियों को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद देंगी। इस बीच महाकुंभ में डिजिटल खोया पाया केंद्र हजारों श्रद्धालुओं, खासकर महिलाओं और बच्चों को उनके परिवारों को आपस में मिलवा रहा है। मेला क्षेत्र में 13,000 से अधिक बिछड़े हुए लोगों को सफलतापूर्वक उनके परिवारों से मिलवाया गया है, जिनमें से 64% महिलाएं थीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट 2025 में गुजरात में रेलवे के लिए 17,155 करोड़ रुपए आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का आभार व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुजरात और पूरे देश का रेलवे नेटवर्क विकास और विस्तार का स्वर्णिम काल देख रहा है। उन्होंने कहा कि 2025-26 का केंद्रीय बजट इस प्रगति को और तेज करेगा। प्रिंस रहीम अल हुसैनी दुनिया के इस्माइली मुसलमानों के 50वें वंशानुगत इमाम बन गए हैं। उन्हें नए आगा खान का नाम दिया गया है। प्रिंस रहीम को उनके पिता और आध्यात्मिक धर्मगुरु करीम आगा खान चतुर्थ के निधन के बाद ये नाम मिला है। 53 वर्षीय प्रिंस रहीम को उनके पिता की वसीयत में आगा खान पंचम के रूप में नामित किया गया था। उनके पिता आगा खान चतुर्थ और अरबपति परोपकारी प्रिंस करीम उल अल हुसैनी का मंगलवार को 88 वर्ष की आयु में पुर्तगाल में निधन हो गया था। भारतीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड से भिड़ेगी। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत ने हाल ही में मेहमान टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 4-1 से शानदार जीत हासिल की थी। सिंगापुर स्मैश विश्व कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारत के मानुष शाह और मानव ठक्कर पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने हांगकांग के वान चुंग तिंग और यी क्वान तो को 3-0 से शानदार जीत दर्ज की। आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला फ्लोरियन बोरासोड और एस्टेबन डोर की चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।